अध्याय 50। इस समय गहरी शरद ऋतु चल रही थी, ठंडी हवाएं बह रही थीं और सूखे पत्ते झड़ रहे थे। एक प्राचीन हवेली में शिवांत्रा कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े व्यापारी कृष्णा के अधीनस्थ और देवान एम्पियर जयदेव द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों का समूह एकत्रित हुआ था। दोनों पक्ष बेहद सतर्क थे, लेकिन शक्ति के स्तर पर उनमें भारी अंतर था। किसी अज्ञात कारण से कृष्णा ने केवल एक सिद्धावस्था एक्सपर्ट वाली टीम भेजी थी, और वह भी केवल एक अर्ली फेज का। इसके विपरीत जयदेव की ओर से आए अधिकांश लोग उच्च कोटि के विशेषज्ञ थे, जिनमें कई सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। मैं गोविंद हूं, हमने अपनी चीज ले आई है, अब तुम्हारी बारी, एक हैंडसम व्यक्ति ने कहा, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। यह गोविंद कोई और नहीं बल्कि तन्मय का छोटा भाई था, वही डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का उपनेता। कृष्णा की ओर से नेतृत्व कर रहा था एक मोटा बूढ़ा व्यक्ति, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं सज्जनों, हम लोग कम हैं पर धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे। डिमोनिक बीस्ट सेबर टूथ्ड टाइगर की लाश पूरी तरह सुरक्षित है, इसे बाहर लाओ, बूढ़े ने जोर से कहा। चार मजबूत आदमी एक कमरे से 5 मीटर लंबा गहरे लाल रंग का बाघ बाहर लाए। उसके शरीर पर मौजूद 16 नुकीले कांटे इस बात का प्रमाण थे कि यह सचमुच एक डिमोनिक बीस्ट यानी सेबर टूथ टाइगर था। वाह, डिमोनिक बीस्ट तो वाकई अलग होती हैं। इतनी देर के बाद भी इसकी लाश से बदबू नहीं आ रही, गोविंद ने मुस्कुराकर कहा। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मिस्टर गोविंद, डिमोनिक बीस्ट का शरीर असाधारण होता है, यह बहुत लंबे समय के बाद ही सड़ता है। हमने इस पर कुछ बिलो ड्राइंग पाउडर छिड़का है, इसलिए यह बिल्कुल भी नहीं सड़ा। हा हा, बिलो ड्राइंग पाउडर, सच में तुम्हारे मालिक की शोहरत बेकार नहीं है, गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हमने तुम्हारा माल देख लिया, अब तुम भी हमारा देखो, उसने इशारा किया और पीछे खड़ा एक व्यक्ति दोनों हाथों में एक जेड केस लेकर आगे आया। केस खुलते ही उसमें एक स्क्वायर जेड ब्लॉक दिखाई दिया, जो बहुरंगी प्रकाश से दमक रहा था। मोटे बूढ़े ने हल्की आंखें मिचमिचाकर उस जेड ब्लॉक को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, जांच की जरूरत नहीं, हमें राजवंश की प्रतिष्ठा पर भरोसा है, अगर यह सौदा सफल रहा तो भविष्य में हमारा मालिक भी जेरीवाल शाही परिवार के साथ कई व्यापार करेगा। गोविंद ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, उस सेबर टूथ्ड टाइगर की लाश उठाओ। उसके आदेश पर चार आदमी आगे आए और लाश उठाई। इसी बीच बूढ़े को भी ट्रांस हेवन डायग्राम मिल गया। दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी से व्यापार कर रहे थे, लेकिन तभी हल्के लगभग अदृश्य धुएं की लहरें वहां फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में कई लोग गिर पड़े। जो चार आदमी टाइगर की लाश उठा रहे थे वे भी तुरंत गिर पड़े। उनके कान, आंख, मुंह और नाक से रक्त बहने लगा, वे मौके पर ही मर गए। खराब, यह धुआं जहरीला है, बूढ़े ने जोर से चिल्लाया। कुछ ही देर में बूढ़े की टीम के सभी लोग मर चुके थे, केवल वह खुद बचा था। दूसरी ओर गोविंद की टीम में से 8 लोग अब भी खड़े थे, सभी सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स। वे अपनी सिद्धावस्था फीटल रेस्पिरेशन टेक्निक का उपयोग करके सांस रोक सकते थे, इसलिए जहर उन पर असर नहीं कर सका। यह अविनाश के आदमी हैं, गोविंद ने ठंडी आवाज में कहा। अविनाश, तुम भी महाराज के मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? यह इलाका पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों के भीतर था। यहां माना अगर किसी को इस लेन देन की जानकारी हो सकती थी तो वह केवल पूर्वी महाराज अविनाश था। बगावत? वह नीच जयदेव जिसे रविंदर ने मदद दी थी, वह जरूर हमारे राजकुमार की योजनाओं के बारे में जानता होगा, पर अब जब मामला यहां तक पहुंच चुका है हमें दिखावे में एकता रखनी होगी। पर अगर तुम सब मारे जाओगे तो जयदेव के पास कोई सबूत नहीं बचेगा। यह आवाज एक वृद्ध व्यक्ति की थी। शंकरनाथ के नेतृत्व में 3 व्यक्ति आंगन में दाखिल हुए, वे भी सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स थे। हालांकि गोविंद की ओर 8 लोग थे, लेकिन शंकरनाथ की ओर सिर्फ 3। फिर भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। पूर्वी राजकुमार, हमारा मालिक तो, मोटे बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, पर तभी एक ठंडी रोशनी चमकी और बूढ़ा वहीं मरा गिर पड़ा। शंकरनाथ के पीछे खड़ा एक काले कपड़ों वाला बूढ़ा मुस्कुराया, उसने उसे एक ही वार में मार डाला। अब अविनाश की ओर सिर्फ 3 लोग थे, 2 लेट फेज सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स और खुद शंकरनाथ, जो कंप्लीट सिद्धावस्था लेवल का सुपर एक्सपर्ट था। सच में पूर्वी राजकुमार काफी ताकतवर है, लेकिन सिर्फ 3 लोगों से हमें लूटने आना थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास नहीं? गोविंद ने ठंडी हंसी के साथ कहा। गोविंद की ओर कुल 7 और लोग थे, जिनमें एक लेट फेज, कुछ मिडिल फेज और कुछ अर्ली फेज सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स शामिल थे। फिर भी शंकरनाथ और उसके साथियों की ताकत उनसे कहीं ऊपर थी। बातें बंद करो, चलो शुरू करें, शंकरनाथ ने शांत स्वर में कहा। जी सीनियर, दोनों काले वस्त्रधारी बूढ़ों ने झुककर कहा। अविनाश के अधीनस्थों में शंकरनाथ का दर्जा सबसे ऊंचा था। सभी लोग एक साथ हमला करो, पहले लेट फेस सिद्धावस्था को मारो, गोविंद ने आदेश दिया। और फिर आठों विशेषज्ञ शंकरनाथ और उसके दो साथियों पर टूट पड़े। शंकरनाथ शांत मुस्कुराया और उसकी देह हवा में विलीन हो गई। तभी गोविंद की टीम का लेट फेस सिद्धावस्था एक्सपर्ट बेचैन होकर पीछे की ओर वार करता है। अचानक शंकरनाथ उसके सामने प्रकट हुआ। तुम्हारा रिएक्शन तेज था, वह मुस्कुराया। क्षण भर में एक तेज रोशनी उसकी तलवार से निकली, जिसने उस व्यक्ति के हथियार को तोड़कर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर विस्फोट की तरह फट गया। हूं, एक खत्म, शंकरनाथ मुस्कुराया। लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह तेजी से पीछे हट गया। उसके गाल पर एक पतली रक्त रेखा उभर आई। लड़ाई रुक गई। एक गुलाबी वस्त्र पहने मध्यम आयु का व्यक्ति वहां खड़ा था, मुस्कुराते हुए। संतोष, तुम, शंकरनाथ की आंखें क्रोध से भर उठी। पिताजी, गोविंद ने झुककर कहा। यह गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति उसका दत्तक पिताजी था, एल्डर संतोष, असली नाम संतोष, जो पहले डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का नेता रह चुका था और अब तन्मय और गोविंद का मार्गदर्शक था। शंकरनाथ, तुम अब भी पुराने जैसे ही ताकतवर हो। अफसोस, मैं थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे, संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान वसंत की आभा जैसी सुंदर थी, पर उसकी उंगलियों के बीच ठंडी घातक चमक नाच रही थी। क्या शंकरनाथ इस बार भी मौत को चकमा दे सकेगा, या यह वही क्षण है जहां एक दंत कथा का अंत होने वाला है? जाने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड सिर्फ नॉवेल सीरीज पर।